ام شنت एक सत्य घटना है। एक गांव से दूर लगभग 2 मील की दूरी पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें एक ही ट्रेन आती थी 12 बजे दिन में, और वही ट्रेन रात को 2 बजे चली जाती थी। 8 बजे के बाद रात को लगभग स्टेशन पर कोई नहीं रहता था, केवल वो यात्री जिन्हें यात्रा करनी है रात को 2 बजे। उसमें एक स्टेशन मास्टर था, 2 कूली और एक कर्मचारी। बस इसके अतिरिक्त उस स्टेशन पर और कोई नहीं था। एक शाम वहाँ एक यात्री आता है जिसे रात की ट्रेन पकड़नी है, और उसके हाथ में एक बैग है, और वो अपने बैग को बार बार देखता है। स्टेशन मास्टर देखता है ऐसा क्या है इस बैग में जो ये व्यक्ति बार बार देख रहा है। हो सकता है बहुत बड़ी रकम हो, और इसको देखकर ऐसा लगता है ये बहुत अमीर व्यक्ति है। और जैसे ही वो स्टेशन मास्टर उस अकेले यात्री को देखता है जो स्टेशन पर है, उस स्टेशन मास्टर के मन में लालच जागता है। वो एक कुली को बुलाता है और दोनों मिलकर उस यात्री की हत्या करने का षड्यंत्र रचते हैं। दोनों ही ध्यान रखे हुए हैं, परंतु यात्री जागा हुआ एक पल के लिए भी वो बैग अपने से दूर नहीं करता है, बार बार देखते रहता है। शाम को आया था, 8-9 बज गए, स्टेशन पर और कोई नहीं। उस कुली को नींद लग जाती है इंतज़ार करते करते, और वो यात्री जो बेंच पर बैठा हुआ है अपनी बैग लेकर अनिद्रा की वजह से बेचैनी से उस बेंच से उठता है और प्लेटफॉर्म पर दूसरी जगह चक्कर लगाने लगता है। वो स्टेशन मास्टर आता है, देखता है बेंच खाली है, और उसे नींद आ जाती है, वो भी सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब कुली की आँख खुलती है अपनी कुल्हाड़ी लेकर, वो देखता है कि बेंच पर वही व्यक्ति सोया हुआ है, और वो जाता है और उसको मार देता है। पर जिसने उसको मारा वो यात्री नहीं था, वो स्टेशन मास्टर था। सुबह खबर सारे गांव तक पहुंचती है, आगे क्या हुआ पता नहीं, पर जिसने षड्यंत्र रचा था उसका ही षड्यंत्र उसके ही प्राण ले बैठा। जो हम करते हैं वो लौट कर वापस आता है। यदि हमने दुख दिया है तो वो दुख लौट कर वापस आएगा, और यदि हमने सुख दिया है तो वो सुख अनंत गुना लौट कर वापस आएगा। उस स्टेशन मास्टर को ये नहीं पता था कि जो षड्यंत्र मैं रच रहा हूँ वो षड्यंत्र लौट कर मेरे ही प्राण हर लेगा। सुबह की अव्यक्त वाणी, वाचा सेवा कर रहे हो, कौन सी सेवा करो? मनसा। और इसको क्या करो? और बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि आत्माएं दुखी है, परेशान है, प्रकृति भी परेशान है। यदि हम सुख नहीं दे सकते तो ऑप्शंस क्या क्या है? कम से कम दुख तो ना दो। यदि हम शांति नहीं फैला सकते, कम से कम अशांति तो नहीं फैलाओ। प्रकंपन फैलाने हैं, वाइब्रेशंस। जो नए आए हैं उनके लिए बाबा ने कुछ कहा है इस मुरली में। क्या कहा? परिवार और बाप दादा तुम्हें क्या देते? वाइब्रेशंस। तो एक सकाश ये भी है, जो नए आए हैं पिछले 10 साल में 2016 से अब तक, या जिन्होंने अव्यक्त मिलन किया ही नहीं है 17 के बाद, ऐसे बच्चों को क्या करना है? विशेष वाइब्रेशंस देने। फर्स्ट टाइमर वालों के लिए बाबा ने क्या कहा? बाप दादा और ब्राह्मण परिवार नए बच्चों को जो पहली बार आए हैं उन्हें क्या देते हैं? वाइब्रेशंस देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, हिम्मत देते हैं। तो एक नई सकाश कैटेगरी जो है वो कौन सी है? न्यू सोल्स, जो डिजिटली डाउनलोडेड चिल्ड्रेन है भगवान के, जिनका जन्म ऑनलाइन हुआ है, जूम बेबीज। एआई बेबीज, यूट्यूब बेबीज, उनको क्या करना है? विशेष अमृत वेला सकाश। और इस सेवा को क्या कहा बाबा ने? बढ़ाओ। कर रहे हो, बढ़ाओ। इसलिए कल से लक्ष्य रखना है 3 times पंसा सकाश। कितनी बार? दिन में सुबह अमृत वेला, दोपहर और शाम। सुबह तो करते ही है, शाम भी करते हैं। एडिशन कौन सी करनी है? दोपहर की। 3 times सकाश। समय, प्रकृति, आत्माएं किसके पास आ रही है? भगवान के पास। समय आ रहा है, प्रकृति आ रही है, आत्माएं आ रही है, और भी कोई आ रहा है जो मुरली में नहीं है, माया, जो दूसरी मुरलियों में आता है। तो कल से क्या करेंगे? टारगेट क्या रखेंगे? 3 times सुबह अमृत वेला, नुमा शाम। अगर चलते फिर रहे, काम में है, बिजी है, तो जहां ड्यूटी पर है वहीं से रुककर, क्योंकि संसार में खराब वाइब्रेशंस है। अभी अभी साकार मुरली थी, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। ये पाप कैसा शब्द है? अक्षर बड़ा बुरा है, यही है। चारों तरफ विकर्म, कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म हो रहे हैं, अत्याचार, अन्याय, करप्शन, भ्रष्टाचार। इसलिए क्या करना है? प्रकंपन फैलाना है चारों तरफ, मनसा सेवा। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, कब की मुरली है ये? 2010 की 15 तारीख की ना, दिसंबर। ये मुरली इससे पहले भी चली है, बाबा मिलन 2021, और अब ये 3री बार चल रही है। तो सबसे पहले आप बताएंगे इस मुरली में बाबा ने क्या कहा? बेफिक्र बादशाह बनो, और क्या कहा? दो ताज, और क्या कहा? पीछे से मेरे को तेरे, और क्या कहा? क्या करो? समय संकल वाइब्रेशंस, समय सफल करो, और क्या करो? व्यर्थ संकल्प का क्या करो? क्या करो? एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, और क्या करो? आले सलबिलेपन का क्या करना है? त्याग कर दो। मुरली में कौन सा शब्द आया है? विदाई। और क्या करो? और क्या करो? हो गई क्या पूरी मुरली? हाँ तो बताओ। हाँ, बोझ की टोकरी नहीं उठानी है। फकूर और फिकर, और संकल्प का क्या करो? सर्वशक्तिवान। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है, और समय डैश महान अनमोल। और क्या कहा? मन मना भाव। और बाबा ने नमस्ते कितनी बार कहा है? दो बार। नमस्ते नमस्ते, कैसे नमस्ते कहा है? दृष्टि देते हुए। और क्या कहा? लाइट का ताज, बोझ की टोकरी। और क्या कहा? बीती को बीती। मधुबन के विषय में क्या कहा? मधुबन तो डैश है, मधुबन तो डैश है। क्या है? मधुबन तो डैश है। क्या है? मधुबन तो डैश है। मधुबन तो मधुबन है। और क्या कहा? और क्या कहा? जल्दी बताओ, सबने पढ़ी है ना मुरली? कि केवल सुनी है। मेरे साथ जा रहे हो तो एक सेकंड में बिंदु। और ज्ञान की उम्र, क्राइटेरिया बताया रॉयल फैमिली में आने का। जब से ज्ञान में आए तब से अब तक क्या दो बातें हैं? मिट्टी में पाँव कितनी बार रखा, और दूसरा फर्स्ट क्राइटेरिया, दिल तख्त पर कितना समय रहा? मिट्टी में पाँव अर्थात देह, देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस, बीसी चैट, बीसी मैसेजेस, बीसी कॉल्स। और क्या कहा? मीठी। मीठी क्या? मीठी आत्मा से पहले कौन सा शब्द है? मीठी आत्मा से पहले कौन सा शब्द है? शब्द कॉमा मीठी आत्मा। क्या है? बताया किसी ने? हाँ, लाडले नहीं है। मधुबन निवासियों से मुलाकात। ऐसे कैसे देख रहे हैं सभी आश्चर्यचकित होकर? पता नहीं कौन सी मुरली चालू है, ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है? हाँ जी, और क्या कहा आज की मुरली में? हाँ, दो खजाने हैं, समय और संकल्प, इनकी तीन चीजें करो। इनको क्या करो? एक तो सफल, दूसरा अलग अलग जगह पर तीन बातें आई है, अटेंशन, तीसरा अंडरलाइन। और क्या कहा? प्यार से शिक्षा दो। किसको? जैसे माँ होती है, क्या करती है वो? प्यार से। तो एक आंख में बाप का प्यार और दूसरी आंख में सेवा का प्रेम, और उसके साथ क्या जोड़ दो? शक्ति को जोड़ दो, और तो उससे क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त। आज का वरदान। और क्या कहा? एक भी सेकंड गवाना नहीं। एक सेकंड कितने के बराबर है? एक साल बोला है आज, अनेक वर्षों के समान है। समय की उपमा आज किसी और चीज से की है। समय की उपमा एकदम नई बात से की है। कौन सी? जो शायद ही किसी और मुरली में आया है, आज तक हमने तो नहीं सुना कभी। महान, अमूल्य और क्या? एक सेकंड भी बिंदु है, बाप बिंदु, सेकंड बिंदु, फुल स्टॉप बिंदु। एक सेकंड भी क्या है? बिंदु। समय की तुलना बिंदु से की गई है। नई बात है ना? और क्या कहा? और क्या कहा? इधर से आज की मुरली अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए है। भूलने का टाइम है 24 घंटे के बाद। अनेक जन्म प्राप्ति कराने वाला ये युग है। और विकर्म विनाश भी करना है, ये भी कहा है। कौन सी सब्जेक्ट कहा है इसको? याद की सब्जेक्ट। और चारों सब्जेक्ट में पास, पास रहना है और पास होना है। और बाप को साथी बनाना है। और पुरुषार्थ की अभी भी मार्जिन है। कब? 2010 में। और अभी? अभी तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ से क्या होगा? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टाइमर्स को क्या कहा? तीव्र पुरुषार्थ से क्या होगा? क्या बढ़ेगा? सुबह सुना तो था कुछ, पता नहीं क्या था। उसके बाद में इतनी सारी बातें आ गई दिन में। हाँ, हिम्मत आप करो मत। आज का बताना है, हफ्ते भर का नहीं। और हाँ, जितना भविष्य बढ़ाना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। किससे? तीव्र पुरुषार्थ से। और क्या कहा? बाप के प्यार का, श्रीमत का हाथ। और बाबा अलबेले बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं। और डैश डैश डैश, बाप अलबेले बच्चों को देखते हैं मुस्कुराते हैं। और डैश डैश डैश, और करी करे करे ही क्या? और करे ही क्या? जो हाथ तो उठाते हैं पर बाद में करते नहीं है, अब उनका क्या करे? कुछ कर सकते? भगवान कह रहा है कि और क्या करे, और करे ही क्या? और क्या कहा? सर्वशक्तिवान, अपना साथी बना दो तो क्या नहीं करना पड़ेगा? किससे छूट जाएंगे? पश्चाताप से छूट जाएंगे। अर्थात हमने अपने जीवन में जब जब पश्चाताप किया है, वो समय था जब उसका साथ छूट गया था। पश्चाताप करने की नौबत आ रही है, अर्थात वो जीवन का वो कालखंड था जब हमने उसका साथ छोड़ दिया था। और क्या कहा? वो हो गया। और हो गई पूरी मुरली? हाँ, किससे? फिकर। तो मुरली किस पर है? बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र बादशाह बनने की विधियां इस मुरली में है। तो ऐसी हम 10 बातें निकालेंगे इस मुरली से क्रमानुसार। सबसे पहली विधि बेफिक्र बनने की, फिकर को किसको दे दो, बाप को दे दो, और क्या ले लो, फकूर ले लो। यह है स्टेप नंबर वन। अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे फियर्स को, कंसर्न्स को, वरीज को, टेंशन्स को यदि एक कागज पर लिखा जाए और उसको एनवलप में डाल दो और एनवलप में लिखो बाबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा की जिम्मेदारी, और सुबह वहां कमरे में कुटिया में डाल दो। या फिर अपनी सारी चिंताओं को, जो भी चिंता है, फिकर है, टेंशन है, कंसर्न्स है, एप्रीहेंशंस, उन सब को लिखना, फोल्ड करना, मैं बाबा को अर्पण करता हूं, करती हूं, कुछ भी। और उसको क्या करना है, कल सुबह। ये काम कब करेंगे, क्लास के बाद, और फिर कल सुबह उसको बाबा को दे देना। बाबा ने कहा है तुम बेफिक्र हो गए। कौन कौन सी बातों में बेफिक्र हो, पांच बातें हैं। किस बात का फिक्र नहीं है, उठते हो तो कोई फिक्र नहीं, खाते हो तो कोई फिक्र नहीं, पीते हो तो कोई फिक्र नहीं, कर्म करते हो तो कोई फिक्र नहीं, और रात को सोते हो तो कोई फिक्र नहीं। तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ी, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी फिक्र कौन सी है, सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ने किसका रूप ले लिया है, टेंशन का। अमृत वेला किसके लिए है, ताकि हम फ्रेश हो जाए, पर टेंशन है कि अमृत वेला उठना है और वो नहीं उठते हैं, और टेंशन है कि बाबा के कमरे में पहुंचना है, ये बड़ा गहरा टेंशन है। अगर ये नहीं होता है तो पूरा दिन दुखी। अगर अमृत वेला मिस हो गया, 5 बजे उठ गए तो सारा दिन मिस, 1 घंटा तो गया ही, पर वो जो 23 घंटे है वो भी गए। तो क्या करना चाहिए, अगर लेट उठे तो, उठना नहीं है पर उठ गए किसी कारण से, कुछ तो हो गया, बीमार थे, थकान हो गई, दिन भर में बहुत काम था, लेट सोए, ट्रैवल कर रहे थे, कुछ तो हुआ, या डिस्टर्ब थे मेंटली। अमृत वेले का पर्पस क्या है, ताकि हम फ्रेश हो जाए, हमारा कनेक्शन फिर भगवान से जुड़ जाए। परंतु वो तो हुआ ही नहीं, अब उसका एक नया टेंशन क्रिएट हुआ है कि अमृत वेला मिस हुआ, इसलिए 24-23 घंटे वापस वेस्ट हो गए। 1 घंटा तो गया ही, सुबह तो गया ही, अभी दिन भी चला गया, तो ये कैसा सौदा रहा। अगर लेट हो भी जाता है और मिस हो भी जाता है तो क्या सोचो, अभी हम एक्स्ट्रा योग करेंगे। क्या सोचेंगे कि आज सारे दिन में अधिक योग युक्त रहेंगे, पश्चाताप नहीं, दुख नहीं, क्या करेंगे, चिंतन, कारण क्या रहा, ये क्यों मिस हुआ। 1-2 मार्ग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है दुखी रहना, ऑप्शन बी है एनालिसिस करना, क्यों, क्या कारण बना, क्या लेट सोए, इंटरनेट पे तो नहीं लगे थे, सोशल मीडिया या और कुछ, कॉल तो नहीं करते बैठे थे, या कोई कल्पनाएं, व्यक्ति ट्रेन में बैठा रो रहा है, सामने वाले को लगता है शायद घर वालों से दूर जा रहा है इसलिए रो रहा है, इसलिए नहीं पूछता है, किसी की पर्सनल बातों को पूछना थोड़ी ना होता है, पर शाम हो जाती है और सामने वाला फिर भी रो रहा है, लगता है सामने वाले को दुख गहरा है इसलिए शायद रो रहा है, वो सो जाता है। यात्रा लंबी है 3 दिनों की, दूसरे दिन सुबह उठता है, देखता है वो व्यक्ति रो ही रहा है, सोचता है शायद कोई बहुत डीप रीजन हो सकता है, पर कैसे पूछूं, पर्सनल मैटर है, तो ठीक है। शाम हो जाती है फिर भी वो रो रहा है, हिम्मत करता है कि पूछूं, फिर लगता है शायद उसका दुख और बढ़ जाएगा इसलिए नहीं पूछता है। अगला दिन आता है, देखता है फिर भी रो रहा है, अब तो उससे रहा नहीं जाता है, पूछता है आखिर कारण क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है मुझे जाना था दिल्ली, ये ट्रेन जा रही है चेन्नई, इसलिए रो रहा हूं। कब से रोना चालू किया? जब से एंट्री की तब से। एंट्री करने के बाद पता चला गलत ट्रेन में हूं। अगर गलत ट्रेन में है ये पता चल जाए तो क्या करना चाहिए? अगले स्टेशन पर उतरना चाहिए। इसने क्या किया? रोना ही चालू रखा। हम भी गलत ट्रेन में तो नहीं है? किसी संबंध की ट्रेन, किसी इच्छा की ट्रेन, किसी करियर डिजायर की ट्रेन, किसी एम्बिशन की ट्रेन, किसी वासना की ट्रेन, किसी कंफ्यूजन की ट्रेन। अगर पता चल गया गलत ट्रेन में है तो क्या करना चाहिए? उतर जाओ। ये अच्छा ऑप्शन है, और ऑप्शन बी तो है ही ये वाला। रोते रहो, अमृत वेला मिस हो गया, अमृत वेला मिस हो गया, अमृत, और सबको सुनाते बैठो आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, क्या करूं, कुछ युक्ति बताओ, आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, सबको सुनाते। और दूसरा कहे कि मेरा भी मिस हुआ, तब तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हम अकेले नहीं है इस यात्रा में, दूसरे भी हमारे साथी संगी हैं। ठीक है, दिल को बड़ी राहत मिलती है। और वो तो कहता है मैं तो सीधा 6 बजे उठा, फिर तो और सुकून मिलता है, हम आगे है। संगम योगी अमृत वेला। शुरुआत में जब वो चालू हुआ था अमृत वेला यज्ञ में, तो कोई ऐसा कोई टाइम फिक्स तो था ही नहीं। तब पर्पस कुछ और था कि सुबह सुबह फ्रेश चिंतन होता है, अच्छे से याद किया जाता है, या फिर लेट नहीं होता है हर कार्य में, इतने सारे लोग हैं, वॉशरूम, ये वो बहुत सारी बातें हैं, ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए, उसलिए वो चालू हुआ था। पर अभी चालू हुआ था किस लिए? फ्रेश होने के लिए, दिन भर की जो थकान है अगले दिन की, मनसा, वो ठीक होने के लिए। परंतु वही अगर टेंशन बन जाए तो, वही अगर फिकर का कारण बन जाए तो, मुरली अगर टेंशन का कारण बन जाए तो, ये दूसरा, भोजन ही टेंशन का कारण बन जाए तो, सेवा ही टेंशन का कारण बन जाए तो सबसे पहली विधि क्या बताई? बोझ को, टेंशन को, फिकर को, भाप को दे दो, और क्या ले लो? फकुर। उर्दू शब्द है, वास्तव में इस शब्द का अर्थ बड़ा निगेटिव होता है, घमंड, अहंकार, परंतु बाबा उसे एक दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं, शुद्ध नशा या शुद्ध अभिमान। मैं बेफिक्र बादशाह हूं, ये अत्यंत पवित्र अहंकार, अहंकार कहो, शुद्ध नशा कहो। बाकी फकुर शब्द कुरान में 2 बार यूज हुआ है, परंतु उन लोगों के लिए यूज हुआ है जो अत्यंत घमंडी है। कुरान की 2 आयतों में शब्द आता है जो घमंडी है। तो बाबा ने क्या कहा? फिकर दे दो, और क्या लो? फकुर ले लो। ये है सबसे पहली विधि, किसके लिए? टेंशन से फ्री होने के लिए। जो चिंताएं हैं, जो वरीज है, कागज पर लिखो, होल्ड करो, और लिखो बाबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम संभालो इसको, मैं ये तुझको सौंपती हूं, दे दिया। तो दिस विल क्रिएट, एक तो बोझ या तो फिर लाइट। तो ये पहली विधि। दूसरी विधि क्या है? मेरे को तेरा, जो जो मेरा है उसको क्या कर दो? तेरा। मोह की बात है यहां पर, जिस पर हमारी मालकियत है, ये सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इससे मोह भी उत्पन्न होता है और अहंकार भी उत्पन्न होता है, दोनों ही चीजें हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। एक प्रोफेसर के पास उसके पुराने विद्यार्थी आते हैं मिलने के लिए। वो सारे विद्यार्थी बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, और सभी अपने जीवन की चर्चा करते हैं, और हम कितना स्ट्रेस में, और टॉपिक टेंशन और स्ट्रेस का आ जाता है। तब वो प्रोफेसर अंदर जाते हैं और सबके लिए ताज़ा जूस लेकर आते हैं, और पर अलग अलग ग्लासेस, कोई चांदी का, कोई क्रिस्टल का, कोई कांच का, कोई बहुत महंगा, और कुछ ग्लासेस एकदम साधारण। तो सारे जो विद्यार्थी होते हैं 5-6, वो अच्छे अच्छे ग्लासेस ले लेते हैं, तब वो प्रोफेसर कहता है, यही पता चल रहा है कि तुम सबने क्या किया, अच्छे अच्छे जो ग्लास थे वो लिए, बाकी तुमको ग्लास से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे था, उस जूस से, उस रस से। ये जो ग्लासेस है यही दुख का कारण है जीवन का, वो साधन है पैसा, संपत्ति, प्रतिष्ठा, करियर, संबंध, ये सब ग्लासेस है। हमारा लक्ष्य है जूस, हमारा लक्ष्य है रस जीवन का, वहां तक पहुंचना है, उस तक पहुंचने के ये सारे माध्यम है। हमने इनको पकड़ के रखा कि जो बेस्ट ग्लास मुझे चाहिए, यही दुख का कारण है। सबसे अच्छा वाला ग्लास मुझे मिलना चाहिए, सबसे महंगा वाला ग्लास मुझे मिलना चाहिए, ये टेंशन का कारण है। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी क्या है, पैसा प्रायोरिटी है या ज्ञान की स्थिति प्रायोरिटी है, करियर प्रायोरिटी है या योग प्रायोरिटी है, तो ये चिंतन है, हर एक ने करना है। तो दूसरी विधि क्या है, जो जो मेरा मेरा मैं कहता हूं उसको क्या कर दो, सौंप दो। उसके विषय में भी एकांत में अमृत वेला सोच सकते हैं कि मैं किसको मेरा मेरा कहता हूं, या कोई व्यक्ति है जिसको मैं कहता हूं ये मेरा है और नाम देता हूं प्रेम, प्रेम अर्थात मालकियत नहीं। एक फूल अगर मुझे बहुत प्रिय है तो मैं क्या करूंगा, उसको तोड़ूंगा, क्या ये प्रेम है, मैं उसको वहीं रखूंगा। लव अलाउज फ्रीडम, मैं उसको समझूंगा, उसकी भावनाओं को, उस पर हुकूमत, मालकियत, अधिकार नहीं जताऊंगा, प्रेम। तो दूसरी विधि क्या है, जो जो मेरा है उसको तेरा कर दो, ये दूसरी। तीसरी विधि, सेकंड में क्या करो, बिंदु, जो भी व्यर्थ आ रहा है क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाता है, क्या लगा दो, पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, ड्रामा। लास्ट टाइम कहा था ना, एक स्टैम्प ही बना के रखो ड्रामा का, क्या बना के रखना है, एक स्टैम्प, अपने जीवन की परिस्थितियां लिखो और स्टैम्प, ड्रामा, फुल स्टॉप। तो बिंदु लगाने का अभ्यास। चौथी विधि, समय और संकल्प, तीनों को क्या करो, तीन बातें करो, सफल, अंडरलाइन और अटेंशन। समय के लिए क्या कहा, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, देखना है आज सुबह से लेकर अब तक हमने क्या किया, वेस्ट तो नहीं किया, जी वाई डी एस में जाना चाहिए, ज्ञान योग धारणा या सेव, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये सारा चिंतन मन को थका देता है। थकान का कारण सेवा नहीं है, कर्म नहीं है, क्या है, वेस्ट थॉट्स उस सेवा के विषय में, कि दूसरे काम नहीं करते हमको ही काम करना पड़ता है, दूसरे छुट्टी पर है हम अकेले ही है, चार लोगों का काम मैं अकेला करता हूं, ये सब क्या करता है, थकान लाता है, सेवा नहीं थकाती। तो चौथी विधि क्या है, समय को सफल और संकल्प, हमारे संकल्प ही तो है सब कुछ, सब रचते हैं। संकल्प को सफल करने की विधि क्या है, उन्हें श्रेष्ठ चिंतन देना है, क्या करना है, उसे श्रेष्ठ महान चिंतन देना है, और सबसे महान चिंतन संसार में कौन सा है, मुरली, मुरली से अधिक महान और क्या चिंतन हो सकता है। संसार में कितना लिटरेचर है, हजारों लाखों करोड़ों किताबें हैं, परंतु वो परमात्मा महावाक्य नहीं है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है परंतु परमात्मा खुशबू उसमें नहीं है। इसलिए क्या करो, रोज की मुरली लो, एक एक लाइन पढ़ो, सोचो क्या है, सोचो क्या है, और कुछ कुछ लाइन को क्या कर लो, बाय हार्ट, 2024 में, नहीं 25 में, 24 फरवरी 2025 संडे एक बहुत अच्छी मुरली थी, उसमें एक लाइन थी, 100 हिमालय जितने विघ्न भी आ जाए तो क्या, तो भी क्या, हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। कितनी अच्छी लाइन थी। जीवन में कितने विघ्न, 100 हिमालय, अभी कितने हैं, छोटी सी पहाड़ी मृत्यु से, उसके आगे हिमालय, और कितने हिमालय, 100 हिमालय, इतने विघ्न आ जाए। यहां पर ड्रिल भी की थी ना, 100 हिमालय, सभी करेंगे ऐसा, 100 हिमालय जितने विघ्न भी आ जाए, हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, 100 हिमालय जितने विघ्न भी आ जाए, हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। अच्छी ड्रिल है ना, 100 हिमालय तो आए नहीं अभी तक, एक भी नहीं आया, जो आए हैं लिंबू टिंबू छुटपुट, अभी तक के विघ्न वही हमको लगते हैं इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, ये परमात्मा महावाक्य है कि कुछ नहीं होगा। तो तीसरी चौथी विधि क्या है, समय और संकल्प। पांचवा, आलस अलबेलापन को क्या करो, विदाई। बाबा के सामने हाथ खड़ा करते हैं और फिर बाद में करते नहीं है, फिर भी हर मुरली की शुरुआत होती है बाप बच्चों को देखकर हर्षित होते। कौन से बच्चे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था लास्ट मिलन में पर काम कुछ भी करके नहीं आए और इसमें क्या कहा, बाप मुस्कुराते हैं और कर ही क्या सकते हैं, और करे ही क्या, अब क्या ही करे ऐसे लोगों का आलस। नींद करने की इच्छा होती है, थकान थकान रहती है, ऐसा कहते हैं, इच्छा नहीं होती है पुरुषार्थ वगैरह करने, एक मानसिक थकान और एक मानसिक आलस। एक व्यक्ति कहता है कि तुम क्या करोगे अगर तुमको 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए, वो कहता है स्वप्न में, वो कहता है बचपन से मुझे घूमने की आदत थी, मैं पूरी दुनिया को मैं घूमूं। दूसरे से पूछता है तुम क्या करोगे अगर स्वप्न में तुम्हें लॉटरी लग जाए, वो कहता है मैं घर पे बैठूंगा, घूमना फिरना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तीसरे से पूछा जाता है तुम क्या करोगे अगर तुम्हें एक स्वप्न दिखा और स्वप्न में तुम्हें लॉटरी लग गई, वो कहता है मैं फिर से सो जाऊंगा, हो सकता है अगला जो स्वप्न में हो आए उसमें थोड़ा ज्यादा मिल जाए और सोऊंगा, हो सकता है करोड़ तक पहुंच जाए। सोना अत्यंत प्रिय लगता है, परम आनंद, परम आनंदम। करने की कुछ इच्छा नहीं होती, ना वॉक करने की इच्छा होती, ना बाहर जाने की इच्छा होती है, कमरे में बंद रहते हैं दिन भर, या कंप्यूटर और एसी, एक तो एसी है और दूसरा गैस है और तीसरा गीजर, ये तीन है, यहां की कंडीशनिंग है सारी, एडिक्शंस। तो पांचवी विधि कौन सी है, अपने आप को खुद ही प्रेरित करना है, खुद ही संकल्प देना है, कितने बजे उठना है मतलब उठना है, ये करना है मतलब करना है, 3 बार सकाश, सुबह दोपहर और शाम। उसके लिए दोपहर की अपनी दिनचर्या को देखना आएगा, देखना पड़ेगा दोपहर में हम क्या करते और किस समय विश्व में किरणें फैलाए, क्योंकि आत्माएं दुखी है, प्रकृति परेशान है, चिल्ला रही है। छठवा, प्यार का सब्जेक्ट। क्या कहा, प्यार का सब्जेक्ट में सब प्यास है, सब सर्टिफिकेट है, पर इस प्यार को क्या करो, प्यार अर्थात साथ, प्यार अर्थात क्या, सात। सोचो एक सब्जेक्ट है ये, अगर प्यार का पेपर हो जाए तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। इस प्यार में बाबा ने वो पॉइंट कही है, रॉयल फैमिली के नजदीक कौन आएंगे, कौन आएंगे, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक चेक करो, क्राइटेरिया ये है कि कितना समय हम ऊपर रहे दिल तख्त पर और कितना समय मिट्टी में, उस आधार से पता चलेगा। ये चेकिंग करनी है, कितने साल हो गए, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक। अगर एक चार्ट बनाया जाए, कितनी बार मिट्टी में गए, मिट्टी में पाँव रखा या मिट्टी खाई, लीकेज कितना हुआ, दैट इज द क्राइटेरिया। पूछने की आवश्यकता नहीं, खुद ही प्लॉट करो, खुद ही चेकिंग करो, 10 बार 15 बार 20 बार, एक मास में कितनी बार ब्रह्मचर्य भंग हुआ, कितनी बार वासनाओं ने आक्रमण किया। चेक चेंज, चेक चेंज, पहले तो स्वीकार करो कि ये हुआ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, क्यों हुआ इसका चिंतन, और ना हो इसके लिए क्या करें, रिपीट ना हो वो, तो इन सब कार्यों के लिए क्या चाहिए, एकांत, मधुबन, और मधुबन में आप सब है इस समय। तो चार धाम, आंगन, मधुबन की गलियां, स्व का चिंतन करना है, दूसरे यहां क्या कर रहे हैं वो देखना ही नहीं, यहां आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाना है। कितने हो गए, 6, 7वां योग का सब्जेक्ट। क्या करना है योग के सब्जेक्ट्स में, विकर्म को विनाश, इसलिए चार्ट को बढ़ाना है, सुबह का 2 घंटा, शाम का 1 घंटा, दोपहर में भी थोड़ा सा, बीच बीच में 10-10 मिनट, सब कुछ करते हुए बैठा हुआ योग कहां तक पहुंचाना है, 4 आवर्स। बैठा हुआ चलता फिरता वाला छोड़ दो, वो होता रहेगा, पर बैठ के कितना घंटा होना चाहिए, कम से कम 4 घंटा तो तीव्र पुरुषार्थी की कैटेगरी में है। खाली सुबह आधा घंटा पौन घंटा बैठ लिया, हो गया सीधा अगले दिन, तो कितना कम हो गया। बैठना इंपॉर्टेंट है, हम खाना खाते हैं ना तो बैठ के खाते हैं ना, या चलते चलते खाते हैं, वैसे ये भी है, योग भी बैठो और करो, उसमें सारी बातें फिर जो जो आप जानते हैं योग की। तो क्या करना है, इससे बेफिक्र होंगे, नहीं तो चिंताएं मन में घूमती रहती है, वही वही विचार, वही वही विचार। योग अर्थात समर्पण, योग की एक परिभाषा क्या है, समर्पण। एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा फार्म हाउस था, और उसके पास एक कारपेंटर था काम करने के लिए, और पूरा दिन उस कारपेंटर का वो जो आरी थी वो खराब हो गई, उसकी जो इलेक्ट्रिक ड्रिल थी वो खराब हो गई, उसका जो ट्रैक्टर था उसका टायर पंक्चर हो गया, लाइट चली गई, ढेर सारी बातें हुई, लेट हो गया काम में। उस व्यक्ति का एक पुराना फार्म हाउस था जिसका रिपेयर चल रहा था, उस मालिक को लगता है कि लेट हो गया, मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपनी गाड़ी में बिठाता है उसको और उसके घर तक छोड़ देता है। वो कारपेंटर कहता है, आप अभी यहाँ तक आए हो तो मेरे घर तक भी चलो, वो घर तक ले जाता है, परंतु दरवाजे से पहले वो कारपेंटर रुक जाता है, वहाँ एक झाड़ होता है और उस झाड़ में ऐसे ऐसे कुछ करता है। वो मालिक देखता है ये क्या है, और जैसे ही घर के अंदर जाता है एकदम बदला हुआ व्यक्ति, एकदम खुश, उसकी पत्नी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, गले लगाता है बच्चों को, एकदम ही इसका चेहरा ही चमक आ जाती है। अभी तक थका हारा दिन, बड़ा कठिन दिन गया, टफ डे, हर चीज में गड़बड़ थी, पर यहां अलग ही था। दोनों बाहर निकलते हैं, वो साहब को कार तक छोड़ने आता है, वो साहब पूछता है कि तुम बाकी तो सब ठीक है, पर ये क्या किया तुमने उस झाड़ के पास। वो कहता है, ये मेरा वरी ट्री है, क्या है, चिंता का वृक्ष झाड़, दिन भर जो कुछ चिंताएं होती है मैं क्या करता हूं, इस झाड़ को डाल देता हूं, और फिर इसको छोड़कर अंदर जाता हूं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगले दिन मैं जब सुबह देखता इनको लेने जाता हूं वो कम हो गई होती है, क्योंकि सामना तो करना ही है, संसार है, वो चीजें कम हो गई होती है। तो उसने कल्पना से क्रिएट किया ये। हम भी डाल सकते हैं बाबा के, ऐसे डाल दो ले ले। तो कौन सा सब्जेक्ट? योग का सब्जेक्ट। अगला, मधुबन निवासियों से मुलाकात बीती सो बीती। जो पुराना था वो हो गया, अब उसको भूल जाओ। पर भूलना इतना आसान नहीं है। पुराने दर्द, पुराने जख्म उभर उभर कर बाहर आते, उनको ट्रिगर अगर मिल गया तो ताजे हो जाते। अमृत वेला उन जख्मों को, उन बातों को प्रेममयी दृष्टि देनी है साक्षी भाव से, तो उसका हीलिंग होगा। दिन भर नहीं देना, दिन भर देंगे तो वो दुख लौट आएगा, याद आ जाएगी। अमृत वेला जब साक्षी भाव है उसके बीच में, 4:15-4:30 के बीच, उन दृश्यों को देखना और केवल दृष्टि देना, नो एनालिसिस, केवल देखना कि ये हुआ दृष्टि, तो उसका हीलिंग हो जाएगा। तो ये एक विधि है। क्या कहा बाबा ने? चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह बनने के लिए क्या करो? बीती सो बीती, जो हो गया व्यर्थ का खाता समाप्त करो। ये पर मुरली पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे उस समय कुछ हुआ था जो बाबा कह रहे। क्या हुआ था पता नहीं, कुछ तो हुआ था, हमने ढूंढा नहीं, पर कुछ तो शायद हुआ है उस समय जो बाबा कह रहे हैं कि जो हो गया ठीक है, अब भूल जाओ उसको, बिंदी लगा दो, समेट लो उसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नवीनता। गुजरात से क्या कहा? नवीनता। कौन सी नवीनता? सेवाओं में नवीनता। हम लोग जो सेवाएं कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवाएं है, परंतु प्रत्यक्षता क्या हुई है? ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, परंतु यहां भगवान आया है ये प्रत्यक्षता नहीं हुई है। सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, सब एक पिता की संतान, ये नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि हमारी ऊर्जा बहुत अधिक VIP सर्विसेस में जा रही है, और वो आ भी गए तो मुश्किल है कितना ज्ञान में चलेंगे, कंसिडरिंग वो सारे पॉलिटिशियंस कहो, सेलिब्रिटीज कहो, वो यहां तक बोलते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। या हो भी सकता है कि हम सोच रहे हैं हम उनको ज्ञान में ला रहे, पर हो सकता है हम उनकी टीम की ओर से खेल रहे, वो हमारा यूज कर रहे, ये तो सत्य नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं? ये चिंतन का विषय है। इसीलिए भट्टियों को ज्यादा बढ़ाना है, इनको थोड़ा कम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें अत्यधिक ऊर्जा और उसमें व्यक्तिगत महिमा संस्था की महिमा से बढ़ जाती है। व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ फोटो खींचने में ज्यादा रस है, उन अवार्ड्स में ज्यादा रस है, और उसमें खर्चा, कितने गांव है, गरीब लोग हैं, ये सारा अगर इधर टर्न कर दिया जाए तो ज्यादा होगा, अच्छा होगा, ऐसा हमें लगता है मनमत। तो क्या कहा बाबा ने? मनसा नवीनता लानी है, कुछ ऐसी नवीनता जो आज तक हुई नहीं है सेवाओं में। योग भट्टियों को बढ़ाओ, लंबी लंबी भट्टियां, 10 दिन की साइलेंस रिट्रीट, 30 दिन की साइलेंस रिट्रीट, 14 दिन की साइलेंस रिट्रीट। जो इस रिट्रीट से बाहर निकल कर आएगा वो व्यक्ति नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, कुछ तो होगा। एक्सटेंडेड साइलेंस रिट्रीट्स। लास्ट पॉइंट है मनसा सेवा, जिसकी हमने शुरुआत की थी, जहां से शुरुआत की थी। तो कितनी बातें हो गई पूरी मुरली में? 10। ये सब करो तो क्या होगा? टेंशन फ्री, फिकर से फारिग। पहली पॉइंट थी फिकर बाप को दे दो, फकूर ले लो, दूसरा मेरे को तेरा, तीसरा सेकंड में बिंदी, चौथा समय संकल्प, पांचवा आलस अल्पेपन को विदाई, पांचवा प्यार की सब्जेक्ट, योग की सब्जेक्ट, मधुबन वाले बिंदी लगाना, बीतीसो बिंदु, नवीनता और लास्ट मनसा सेवा। ऐसे कैसे? इसमें मनसा सेवा के लिए वो भी उदाहरण दिया है, भूखे का, उसको बस भोजन चाहिए। ऐसी संसार में आत्माओं को बस सुख की बूंद चाहिए, एक वो देना है। ऐसे कैसे? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को ऐसे, बेफिक्र बादशाहों को ऐसे, सफलता मूर्त आत्माओं को ऐसे, पश्चाताप से छूटने के लिए क्या, सर्वशक्तिवान को अपने साथी बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, वाइब्रेशंस सेवा से सेवा करने वाली आत्माओं को ऐसे, नवीनता लाने वाली आत्माओं को ऐसे, मनसा सेवा करने वाली आत्माओं को ऐसे, समय संकल्प और समय संकल्प को अंडरलाइन सफल और अटेंशन देने वाली आत्माओं को ऐसे, सेकंड में बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, हाजी करने वाली आत्माओं को, हिम्मत रखने वाली आत्माओं को, आगे बढ़ने वाली आत्माओं को, तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को ऐसे, हर सब्जेक्ट में पास होने वाली आत्माओं को ऐसे, मेरे को तेरे में परिवर्तित करने वाली आत्माओं को ऐसे, डबल ताजधारी आत्माओं को ऐसे, मन मनाभाव में रहने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे, ज्वालामुखी योग प्रेम की सब्जेक्ट, प्यार के सब्जेक्ट में आगे बढ़ने वाली आत्माओं को, याद की सब्जेक्ट से विकर्म विनाश करने वाली आत्माओं को ऐसे, स्नेही मूर्त आत्माओं को, शक्ति स्वरूप आत्माओं को, एक आंख में शक्ति, एक आंख में, एक आंख में बाप की प्यार, बाप का प्यार और सेवा ऐसे, सर्वशक्तिवान का अनुभव करने वाली आत्माओं को संकल्प से ऐसे, रॉयल फैमिली में आने वाली आत्माओं को, मिट्टी में पांव न रखने वाली आत्माओं को, बाप के दिल तख्त पर रहने वाली आत्माओं को, बोझ की टोकरी न उठाने वाली आत्माओं को, लाइट का ताज, डबल ताजधारी आत्माओं को ऐसे आत्माओं को, बाप दादा का, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति।